नमस्कार साथियों, छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से दिनकर पातुकर। आज हम आपको मेरी भी आवाज सुनो कार्यक्रम के तहत हरिभक्त परायण महाराज महाराज सिंधी से रूबरू कराने जा रहे। नमस्कार महाराज जी।
नमस्कार।
छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर मेरी भी आवाज सुनो कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि भाई शासन द्वारा वृद्धा, विकलांग और विधवा हितग्राहियों को जो पेंशन दी जाती है, क्या वो पर्याप्त है या इसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए?
मैं इस विषय में बहुत सारी बातें शासन को अवगत करवाना चाहता हूं। आज वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो वृद्धा, विकलांग, विधवा इनको दी जाने वाली पेंशन बहुत कम है। वर्तमान स्थिति का आकलन यदि किया जाए तो वृद्धा को 600 रुपए महीना दिया जाता है या किसी को मिलता भी नहीं। किसी के कार्ड यदि ग्रामीण अंचल में है तो जानबूझकर उनके कार्ड शहरी शाखाओं में परिवर्तन कराए जा रहे हैं, जिससे उनको जाने आने में बहुत सारी तकलीफें महसूस हो और वहां तक पहुंच ना पाए, ऐसा भी कुछ हो रहा है। और वर्तमान स्थिति का आकलन यदि किया जाए तो महंगाई इतनी बड़ी है कुछ 600 रुपया जो पेंशन शासन की ओर से दी जा रही है वो इतनी कम है। आज जब 600 रुपया देना शासन ने आरंभ किया उस समय तेल के दाम 80 रुपए किलो मात्र के थे, आज वर्तमान स्थिति में 160 रुपए 150 रुपए खाने का तेल हो गया, वो भी मिलता नहीं। इतनी आफत आ गई है। जितना किराना है उतना किराने का यदि आकलन करे तो एक दो साल के पहले जो चीज 100 रुपए में मिलती थी आज 150-200 रुपए उसके दाम ली जा रहे हैं। यानी हर तरह से यदि आकलन किया जाए तो वर्तमान किराना बाजार में या तेल के बाजार में सब ओर से देखा जाए तो 1.5 गुना 2 गुना महंगाई इतनी हो गई कि आज पेंशन इतनी कम लगती है कि 100 रुपए का दाम 10 रुपए का हो गया। और इस तरह से देखा जाए तो 600 रुपया कोई मायना नहीं रखता। विकलांगों को यदि देखा जाए, विकलांग पुरुष को जो शासन की ओर से सहायता राशि दी जाती है वो भी इतनी कम है कि वो अपना परिवार या खुद की जो दिन में लगने वाली स्वतः की जो गरज है वो भी वो पूर्ण नहीं कर पाता। इसलिए शासन से मैं निवेदन करता हूँ, वृद्धा के लिए आगे आए, विकलांग लोगों के लिए आगे आए, विधवा के लिए शासन ने योजनाएं जाहिर की, लेकिन बहुत बार तो ऐसा होता है जो योजनाएं आती है वो उन योजनाओं का आधार उनको मिलता ही नहीं। बहुत सारी जो योजनाएं है कर्मचारी खुद के पास खुद का समय बचाने के लिए रख लेते हैं और विधवा बिचारी उस योजना से कई कोसों दूर रह जाती है। कई बार तो राशन आता है, पैसा लेकर उनको दिया जाता है, जबकि शासन के माध्यम से दिया जाने वाला जो राशन है वो फ्री में आता है। कई बार ऐसा उनको हरासमेंट किया जाता है, कभी आज नहीं कभी कल आओ, कभी कल नहीं परसों आओ, कभी इनका सर्वर डाउन हो जाता है। तो इन सब बातों को आकलन करते हुए ग्रामीण अंचल के जितने दूर दराज में रहने वाले विधवाओं के जो परिवार है उनसे इतनी परेशानियां झेलते हैं कि जो उनको मिलने वाला राशन है उससे कई गुना उनकी मजदूरी गिर जाती है, लेकिन उनके हाथ में राशन की थैली नहीं आती। आज समाज में यदि देखा जाए तो इतनी बद हालत है कि हर आदमी इस महंगाई की इतनी चपेट में आ गया कि वो घर से बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो गया। बाजार बंद हो गए। बाजार बंद होने के कारण किराना और सब्जियां कोरोना ने हमें घर के सामने लेने के लिए मजबूर कर दिया। पहले बाजार लगते थे, बाजार में जाकर हम रेट भाव करते थे, रेट भाव कर किराना लिया करते थे, रेट भाव के आधार पर 10 दुकान घूमते हुए सब्जियां ली जाती थी। आज उन सब्जियों के दाम आसमान छूने लग गए और आज उन सभी फल को सब्जियों को लेने के लिए आम आदमी तरसता है लेकिन ले नहीं पाता। हर दिन की मजदूरी मिल नहीं रही है
महाराज जी,
मजदूरी की भी रेट कम हो गए
महाराज जी।
हाँ
जैसा कि आपने बताते हुए बताया कि भी कुछ लोगों को शहरी क्षेत्र में भी जोड़ जाना है, नहीं आपके कहने का मतलब पेंशन के लिए जो शासन ने नियम निर्धारित किया है गरीबी रेखा के कार्ड की आवश्यकता, आप उसे समझ रहे या इस तरह का कोई मामला प्रकाश में आया है?
गरीबी रेखा के नियम के आधार पर भी मैं बोल रहा हूँ, और ऐसे कई मामले सामने आए कि जो सोसाइटी में राशन आया बगैर दाम का दिया जाना था, शासन के निर्देश थे, फिर भी सोसाइटी वालों ने दाम लेकर उस दाम को, उस अनाज को ग्राहकों को बेचा है। ऐसा मामला रामा को नाम ही सामने आया, और वो उसको प्रकाश में लाने के लिए हमारे दिनकर जी पातुरकर ने अथक प्रयास किया और लोगों से अवगत करवाया, अन्यथा ये बात सामने नहीं आती कि ये राशन हमें फ्री में मिल रहा है और ये लूट कर खा जाते। ऐसी कई सारी योजनाएं शासन के कर्मचारी करते हैं जो आम जनता को पता ही नहीं होता। तो इस बात से मैं
महाराज जी, जैसा कि आपने बोला राशन के मामले को लेकर, तो पिछली बार इस मामले को छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी ने प्रमुखता से उठाया और संबंधित सोसाइटी के विक्रेता द्वारा जो लिया गया पैसा था वो वापस भी किया गया और उन्हें राशन भी फ्री बांटा गया। क्या आपके क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ?
हमारे क्षेत्र में रामाकोना छोड़कर अन्य जगह ऐसा मामला उजागर नहीं हुआ, प्राय हुआ तो जरूर होगा क्योंकि ये बात हर हाल समाज के सामने आती नहीं। जहाँ पर सुचारू रूप से काम करने वाले या अपने नागरिकता के आधार पर जो कर्तव्य दक्ष आम नागरिक होता है वो बात ये समाज के सामने लाने का प्रयास करता है, और प्राय जो राशन है ऐसा ऐसे लोगों को दिया जाना था और उन तक ये बात नहीं गई, इसलिए समाज में ये बात हर जगह उजागर नहीं हो पाई। लेकिन जहाँ पर ये उजागर हुई ऐसा रामाकोना क्षेत्र, और वहाँ के उजागर करने वाले को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
महाराज जी, अभी वर्तमान में आपकी उम्र कितनी है?
अभी मेरी उम्र 63 साल।
क्या आपको पेंशन मिल पा रही है?
हाँ, नहीं नहीं, वर्तमान में यदि विचार किया जाए तो वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन के अलावा समाज में और किसी को पेंशन देने की व्यवस्था शासन ने निर्धारित नहीं की है। सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से केंद्र सरकार का नियम है कि सांस्कृतिक मंत्रालय के माध्यम से लोक कला से जिंदगी जीने वाले, लोक कला के माध्यम से समाज में जन जागृति लाने वाले, लोक कला के माध्यम से समाज को सदियों से जिन लोगों ने जागरूक किया, ऐसे लोक कलाकार, वो शाहिर हो, शायर हो, या नुक्कड़ करने वाला हो, या प्रवचन करने वाला हो, कीर्तनकार, कीर्तन के माध्यम से समाज को जन जागृति देता हो, ऐसे लोगों ने समाज को आज तक बिल्कुल एक लोक शिक्षा दी, और उन लोक शिक्षा के माध्यम से समाज को जागृति देते हुए हर हाल के इतिहास से, वर्तमान परिस्थिति से अवगत करवाया, और ऐसे परिस्थितियों को अवगत करवाते करवाते उनकी सदियां चली गई, उनकी पीढ़ियां चली गई, लेकिन महाराष्ट्र शासन के अलावा और कहीं उनको पेंशन देने की सुविधा नहीं की गई है।
महाराज जी, जैसा कि आप बोले कि भाई महाराष्ट्र में लोक कला के माध्यम से जनजागरण करने वाले लोगों को पेंशन मिलती है, यह व्यवस्था मध्य प्रदेश में नहीं है, क्योंकि आप भी इसी क्षेत्र से जुड़े हो और साथ में मध्य प्रदेश में एक बड़े पद पर भी आसीन हो, तो आप किस संगठन से जुड़े हो और उस संगठन के माध्यम से आप मध्य प्रदेश शासन से क्या मांग करना चाहोगे?
मैं स्वयं भी एक बड़े संगठन से जुड़ा हूँ, राष्ट्रीय भागवत धर्म परिषद का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मध्य प्रदेश राज्य का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इस अध्यक्ष पद के नाते मैं शासन से अवगत करवाना चाहता हूँ कि जिस समाज को ज्ञान देने के लिए, संतों का विचार देने के लिए, सत्शास्त्र पढ़ाने के लिए हमारी पीढ़ियां गुजर रही है, और उन्होंने भगवत कथा के माध्यम से समाज को जागृति दी, जो काम शासन नहीं करता है वो काम संत करते हैं। पुलिस के डंडे से जो काम होता है, पुलिस चोरी करने के बाद पूछती है, और संत चोरी करने वाले को पहले ही इंसान बनाती है, तो चोरी करना वो बंद कर देता है। पुलिस गुनाह करने के बाद दंड देती है, लेकिन संत जब अपना सजगता से विचार समाज में रखते हैं, तो अपनी सजगता से समाज की बुराई या चोरी करने की नियत या कुछ बुरा कार्य करने की नियत समाज के अंदर से वो विचारधारा ही नष्ट कर देता है। संत का ये कार्य है, और ऐसा कार्य करने वाले संतों ने आज तक न जाने कई साल गुजार दिए, लेकिन शासन कभी इनके ओर आंख उठाकर नहीं देखता ताकि इनको कुछ सहायता मिल सके। मैं शासन को अवगत करवाता हूँ कि राष्ट्रीय भारतीय धर्म परिषद का अध्यक्ष वारकरी संप्रदाय से जुड़ा होने के कारण ऐसे लोक संगीत के माध्यम से जो लोगों को शास्त्र अवगत कराते हैं, आचार संहिता शास्त्र की पढ़ाते हैं, ताकि इंसान इंसानियत से जिंदगी जिए, चाहे किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी संप्रदाय का हो, लेकिन वो एक इंसान बनकर जिंदगी जिए, इस तरह का शिक्षण देने वाली जो संस्था है और संत है, ऐसी परंपरा से अवगत करवाते हुए इंसान को इंसानियत पढ़ाते पढ़ाते आज उनकी सदियां जा रही है, पीढ़ियां जा रही है। मैं शासन से निवेदन करूंगा ऐसे लोगों की पेंशन के लिए जरूर जरूर व्यवस्था करें, चाहे वो लोक संगीत हो, चाहे प्रवचन करने वाले हो, कीर्तनकार हो, या गायक हो, या कलाकार हो, या बजाने वाले हो, चाहे जो भी हो, उन सभी के भोजन पानी की व्यवस्था करें। वर्तमान स्थिति में कोरोना काल के 2 साल के चलते हुए इतनी बुरी हालत समाज की हो गई कि समाज आज कोई भी सामाजिक या धार्मिक आयोजन नहीं कर पाता, क्योंकि कोरोना से बहुत बड़ा डर पैदा हो गया है। कोरोना ने सभी कलाकारों को घर में रोक दिया है और आयोजनकर्ता भी इतने हताश है कि आयोजन करे तो किस माध्यम से करे, कोरोना का डर उन्हें भी लगता है। तो लोगों की जान बचे, जिंदगी बचे, जान है तो जहान है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये अपने देश का नारा, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा, और उसी के तहत हम चलते चलते वर्तमान में इन आयोजनों को आयोजित कर नहीं पा रहे हैं। इसके कारण लोक कलाकारों का जीवन इतना खतरे में आ गया है, किसी ने आत्महत्या करके जिंदगी को ही समाप्त कर दिया, कोई तो अपने धर्म पत्नी के शरीर पर जितने आभूषण थे बेच बेच कर अपनी जिंदगी सवार रहे, वो भी पैसा समाप्त हो गया, आज खाने के लिए उनको लाले पड़ रहे, और दूसरा काम तो उन्हें जमता नहीं। शासन से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे जो लोक कलाकार है, गायक है, वादक है, प्रवचनकार है, कीर्तनकार है, जो समाज को नशा मुक्ति पढ़ाते हैं, तो व्यभिचार से दूर लेकर जाते हैं, इंसान को इंसानियत की नसीहत देते हैं, इंसान बनाते हैं, ऐसे लोगों की व्यवस्था यदि शासन कुछ अपनी सहायता से करे तो एक बहुत बड़ा उपकार सरकार का, शासन का, प्रशासन का, उन सभी कलाकारों के ऊपर और महाराज लोगों के ऊपर होगा।
महाराज जी, मेरा आपको एक अंतिम प्रश्न, मेरी भी आवाज सुनो कार्यक्रम के तहत आपने कलाकारों की भी मांग रखी है, और मैं आपसे अंतिम प्रश्न ये जानना चाह रहा हूँ, वर्तमान में जो पेंशन है जो विकलांग विधवा और वृद्ध लोगों को मिल रही है, इसमें कम से कम कितनी बढ़ोतरी की जानी चाहिए ताकि यह लोग अपना दैनिक जीवन अच्छे से जी सके।
हाँ, वर्तमान स्थिति में मिलने वाला जो वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, इनमें वर्तमान स्थिति की जो मार्केट की परिस्थिति है, जो बढ़ता हुआ मार्केट का दाम है, या जिंदगी जीने के लिए जो लगता है, मुझे लगता है कम से कम 1500 रुपए इनका प्रति माह यदि पेंशन हो गया तो थोड़ा सा थोड़ी सी इनको राहत मिल सकती है, ताकि 2 समय का भोजन कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ जिंदगी जी सकते हैं। बहुत ज्यादा तो मांग अपन नहीं कर सकते कि एकदम हम लाखों रुपए की मांग तो नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम 600 रुपए है, उसको बढ़ाकर 1500 रुपए यदि हो जाता है तो इनका जीवन थोड़ा सा एक धीरज देने वाला हो जाएगा। 2 समय का लगने वाला किराना, 2 समय की लगने वाली रोटी, उसके लिए गुजारिश जरूर कर सकते हैं। अरे अपन मार्केट में जाए, किसी ढाबे के ऊपर बैठ जाए तो 1000 रुपए की थाली 1 समय की भोजन की होती है, ये तो घर में भोजन करने की व्यवस्था बनाने की अपन बात कर रहे हैं। हो सके इतना यदि शासन करता है तो जरूर इन लोगों को बहुत बड़ी सहायता हो जाएगी, और इनके हर दिन की जो जरूरतें हैं उनको पूरी करने में थोड़ी सी सहायता मिलने से इनका जिंदगी जीना आसान हो जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, जो आपने मेरी भी आवाज सुनो कार्यक्रम से रूबरू होकर वर्तमान में मिलने वाली पेंशन को 1500 रुपए तक करने का आग्रह मध्यप्रदेश शासन से किया। बहुत बहुत धन्यवाद। छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी आपका धन्यवाद करता है।
धन्यवाद।